सत्ता जीव के दृष्टि में होती है, जड़ नहीं तो है नहीं। जड़ की जो सत्ता है ये अज्ञान युक्त हमारी आंखों में है, भगवान की दृष्टि में जड़ की सत्ता नहीं है। तो ये देह और ये देही है, इस प्रकार का जो भेदभाव है ये प्रकृति के राज्य में है, जड़ राज्य में है। अप्राकृतिक लोग में जहाँ प्रकृति भी चिन्मय है वहाँ सभी कुछ चिन्मय होता है, तो वहाँ अचित की जो प्रतीति होती है कहीं कहीं वो तो केवल चिद्विलास अथवा भगवान के लीला की सिद्धि के लिए होती है, अचित वहाँ कुछ है नहीं। तो इसलिए होता क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है ये जड़ राज्य में है, हम जीव है ना, तो जड़ राज्य में हम प्राकृत चीजों को देखते हैं, जड़ देखते हैं। तो जब हम कभी किसी अप्राकृत वस्तु का भी विचार करते हैं, जैसे भगवान का दिव्य लीला प्रसंग, भगवान की रास लीला इत्यादि, ये सर्वथा अप्राकृत चिन्मय लीला है। पर हम विचार करते हैं उस समय, हम विचार करते हैं कौन सी बुद्धि से, जो बुद्धि जड़ में प्रविष्ट है, जो जड़ को ही देखती है। तो अपनी जोराज्य की धारणाओं को, कल्पनाओं को क्रिया कर हम उसी का दिव्य राज्य में आरोप कर लेते हैं, और अपनी सड़ी गली गंदी आंखों से हम वही सड़ी गली गंदी चीजों को, हाड़ मांस के रक्त के शरीर को जिसमें विष्ठा मूत्र भरा है, इसी की कल्पना करते, इसी को देखते हैं, चिन्मय राज्य में हम प्रवेश नहीं करते। इसीलिए ये रास में हम लोग ये स्त्री पुरुषों की लीला की कल्पना है, पर ये बात ध्यान में रखने की है कि रास जो है ये परम उज्ज्वल दिव्य रस का प्रकाश है। ये जड़ जगत की बात तो दूर रही, हम यहाँ तक कह रहे हैं तो अत्युक्ति नहीं कि ज्ञान या विज्ञान रूप जगत में भी ये प्रकट नहीं होता है। और इतना ही नहीं, जो साक्षात चिन्मय तत्व है उस परम दिव्य चिन्मय तत्व में भी इस उज्जवल रस का लेसा भास नहीं रहता, यहाँ तक हम कह सकते हैं। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भाव में ही श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा, कृष्ण गृहित मानसा जिनका नाम आया है इसमें, उन श्री गोपी जनों के मधुर हृदय नहीं होती है, और वो गोपी का मधुर हृदय भगवान का ही स्वरूप है। तो इसलिए इस रासलीला के यथार्थ रूप को और परम माधुर्य को समझने के लिए सबसे पहले देखना चाहिए कि भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला है। गोपियां भगवत स्वरूप हैं, वो चिन्मयी हैं, सच्चिदानंदमयी हैं। अब ये साधना विधि से भी उन्होंने जड़ शरीर का मानो एक तरह से त्याग कर दिया है। सुख शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग और कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष, इनका भी उन्होंने त्याग कर दिया है। इनकी दृष्टि में क्या है, गोपियों की दृष्टि में क्या है, ये बहुत समझने की चीज है। साधना की ऊंची से ऊंची चीज गोपियों की दृष्टि में है, केवल चिदानंद स्वरूप प्रेमास्पद श्री कृष्ण, बस उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत आ गया है। श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत गोपियों के हृदय में छलकता रहता है, इसीलिए श्री कृष्ण उनके हृदय के प्रेमामृत का रसा स्वादन करने के लिए लालायित होते हैं, लालायित रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने मन की रचना की, इसीलिए उन्होंने गोपांगनाओं का आवाहन किया, इसीलिए सर्ग की रात्रि को, रात्रियों को रात्रियां हो गई, उन्होंने चुना और उनको बुलाया। तो यहाँ पर ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर कोई जड़ देह है, यहाँ पर गोपियों को पहचानना चाहिए। आप ये शास्त्रों में आता है। और एक बात छोड़ दी, ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद और अर्जुन, ऐसे ऐसे लोगों ने गोपियों की उपासना करके और गोपी भाव की थोड़ी सी लीला देखने के लिए वरदान प्राप्त किया। और अनुसुया सावित्री इत्यादि देवियां जो हैं महान पतिव्रता, ये गोपियों के चरण धूल की उपासिका है। वो कितना बड़ा, एकमात्र श्री कृष्ण के सिवा कोई पति है ही नहीं, इस बात को देखने वाली परम पतिव्रता तो गोपियां थी, कोई था ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये उससे नीचा भाव, पर इस भाव में भी हम देखें तब हम गोपियों की दिव्य लीला पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखने की है कि ये भगवान की लीला है, भगवान सच्चिदानंद घन दिव्य है, अजन्मा है, अविनाशी है, हानि उपादान रहित है, सनातन है, शुद्ध है। इसी प्रकार गोपियां भी भगवान की स्वरूप भूता श्री राधा जी की काया भी रूपा है, ये उनके अंतरंग शक्तियां हैं, इन दोनों का संबंध भी नित्य और दिव्य है। बस ये भावराज्य की लीला सुर शरीर स्थूल मन से परे की है। तो इसलिए जब गोपियों का आवरण भंग हुआ तब इस लीला में लीला के लिए भगवान ने उनको संकेत किया दिव्यरात्रियों का, उसी संकेत के अनुसार भगवान ने इनका आवाहन किया, यहाँ से आरंभ होता है। बहुत संक्षेप में दो तीन चार श्लोकों के बाद कह लेनी अधिक नहीं, और उसे भी बहुत पीछे उतर कर। ये भगवान का मिलन कब होता है, भगवान का मिलन कब होता है, जब और किसी वस्तु की भी कल्पना मन में नहीं रहती और भगवान के मिलन के लिए चित्त अत्यंत आतुर हो जाता है। ये दशा जब होती है और जब भगवान इसको देखते हैं कि अब ये जरा सा इशारा पाते ही, जरा सा संकेत पाते ही सर्वस्व का त्याग तो कर ही चुका है, उस सर्वस्व के त्याग को प्रत्यक्ष करके मयूर आ जाएगा। इस प्रकार की जब स्थिति देखते हैं भगवान, तब भगवान मुरली बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, भगवान मुरली बजाते हैं, और वो मुरली के ध्वनि उन्हीं को सुनाई देती है। ये मुरली तो बजी उस समय ब्रज में भगवान ने बजाई, और वो मुरली जिस मुरली की ध्वनि दिव्य लोकों में पहुंच पहुंच कर वहां के देवताओं को भी स्तंभित कर देती है और नचा देती है, उस मुरली की ध्वनि उस दिन आज के दिन शारदीय रात्रि के दिन और नहीं सुनी। मुरली बजी और मुरली बजी सब जगह बजी, पर उनकी उस मुरली की ध्वनि किनके कानों में गई, जो भगवान से मिलने के लिए जिनका हृदय अत्यंत उत्तप्त था, आतुर था, उनके हृदय में उनके कानों में भगवान की मुरली गई। मुरली क्या थी, ये भगवान का आह्वान था, उनकी साधना पूर्ण हो चुकी, भगवान ने अगली रात्रि उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया, बस अब मुरली बजी। तो मुरली बजी तो क्या हुआ, बड़ी सुंदर भावना इस बड़ी सुंदर बात लिखी है श्रीमद् भागवत में, मुरली बजी निसन्न गीतम भजनंग वर्धनम भज स्त्रिय कृष्ण गृहित मानसा आजूरन्न लक्षितोद्यम सुवत्र कांतो जलोल कुंडला। ये स्थिति है भगवान की विरही साधक की, बड़ी ऊंची स्थिति। कहते हैं कि मुरली बजी, मुरली का गीत उन्हें सुनाया, गीत कैसा था, अरंग दर्शन था। ये जितने भी संसार में प्रकृति की चीज देखते हैं उसमें कोई अरंग नहीं है, प्रकृति अरंग नहीं है, प्रकृति अंग वाली है। और ये अंग वाली चीज इनके मन में रही नहीं, कोई भी अंग वाली चीज गोपियों के मन में नहीं रही। तो वो जो अनंग है, अनंग कौन है? भगवान है। अनंग कौन है? प्रेम है, और कोई अनंग है ही नहीं। तो ये इस अनंग की, इस प्रेम की वृद्धि करने वाली वो वेणु की ध्वनि इनके कान में पड़ी। किनके कान में पड़ी? एक शब्द बड़ा सुंदर है, कृष्ण गृहित मानसा, जिनके मनों को श्री कृष्ण ने पहले से ही ले रखा था। हैं, गोपियों का मन अपने वश में नहीं, कृष्ण गृहित मानसा। जो कृष्ण गृहित मानसा नहीं होंगे ना, उनको घर के काम में उससे छुट्टी नहीं मिल सकती। जो कृष्ण गृहित मानस नहीं है वो भगवान के आह्वान को नहीं सुन सकता। वो तो घर में फंसा है, उसको तो घर की पुकार सुनाई पड़ती है चारों तरफ से, घरी की पुकार। मुरली की पुकार कहाँ सुनेगी? इसलिए मुरली की पुकार ब्रज में गई, पर उन्हीं ब्रज बालाओं ने सुना, घर के लोगों ने सुना। वो घर में मन था ना, तो कृष्ण गृहित मानस नहीं थे। वो तो सब के सब घरी में उनका मानस रम रहा था, घरी ने उनके मानस को पकड़ रखा था। ये कैसी थी? कृष्ण गृहित मानसा, इनके मन को श्री कृष्ण ने पहले से ही ले रखा था। तो क्या करे आदमी, कि मन जो है ना इसको खुला छोड़ दे, खुला छोड़ दे, खुला छोड़ दे। तो हमने तो खुला छोड़ रखा है, जहां चाहता हमको ले जाता है। बोलिए, खुला छोड़ना नहीं है, ये तो किसी में लगा के छोड़ना है। विषय में लगे हुए मन को खुला छोड़ना हम कहते हैं, तो खुला क्या टूटा? ये तो विषयों से जुड़ा हुआ है। खुला छोड़ने का अर्थ क्या है? विषयों से हटा के खुला छोड़ दे, विषयों से हटा के, विषयों को मन से निकाल के, विषयों से मन को हटा के मन को खुला छोड़ दे। जहां खुला मन हुआ तो भगवान ले जाएंगे, ये बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान आते हैं पर हमारे मन को खुला नहीं देखते, भगवान आते हैं पर हमारे मन को किसी के द्वारा पकड़ा हुआ देखते हैं, भगवान आते हैं हमारे मन में किसी को बैठा देखते हैं। तो भगवान देखते हैं इसका मन तो खाली नहीं, इसका मन तो खुला नहीं, लौट जाते हैं। तो मन को गोपियों ने खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, मन को खुला छोड़ दिया, सब चीजों से मन को खोल दिया। मन के जितने बंधन थे संसार के वो त्याग दिए, काट दिए, मदर थे तुझे ही कहा सब। अब क्या हुआ? जब मन इनका ऐसा हो गया जिसमें संसार रहा नहीं, तो भगवान ने आके इसको पकड़ लिया, और पकड़ के उसको उनके मन को कि अपने मन में ले गए, और उनके मन में अपने मन को बैठा दिए। तामन मनस्का का ये अर्थ है, तामन मनस्का का ये अर्थ है कि गोपियों का अपना मन था नहीं, और उनके मन में श्री कृष्ण का मन आ बैठा। तो उनका मन कहाँ गया? कृष्ण गृहित मानसा। तो गोपी भाव की जब हम बात करें तो ये पहले सोच लेना चाहिए कि हमारा मन संसार से मुक्त होकर, खाली होकर भगवान के द्वारा पकड़ा जा चुका है कि नहीं? भगवान ने हमारे मन को पकड़ लिया है कि नहीं? अगर नहीं पकड़ा है तो हम गोपी नहीं बन सकते। तो कृष्ण गृहित मानसा, उस वेणु गीत को जो भगवान ने गाया, अनंग वर्धन गीत था, अरंग प्रेम, भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला, उस गीत को सुना उन लोगों ने जिनसे गोपांगनाओं का मन श्री कृष्ण ने पहले ले रखा था। बड़ी सुंदर ने तो सुनते ही, बड़ी बढ़िया बात है। लोभी आदमी को, कोई धन का अत्यंत लोभी हो, और धन की आवश्यकता हो, उसको पता लग जाए कि अमुक जगह पर धन पड़ा है और जाके मिल जाएगा, छूट रहा है तो कुछ साथ ही बता देगा, फिर वो सलाह नहीं करेगा कि आदमी साथ चलो बटोरना, किसी मेले में जाना है तमाशा तो हरियाणा से नहीं होता है, लोभी है ना, तो जहां सुनी बात की वहां भागा, सलाह नहीं किसी से बातचीत नहीं, सलाह के सिक्के में तुम साथ चलिए नहीं। तो कहते हैं कि बड़ी सुंदर यहां जो थी ये अन्योन्यम अलक्षित उद्यमा, इन्होंने कहा नहीं हम जा रहे तुम भी चलो। इसका एक कारण और भी आएगा, वो कहा नहीं क्योंकि ये तो कृष्ण गई थे मानसा थी ना, मैं यहां से आया हम तो बिना किसी से कहे सुने ही, और ये चल भी, और चल भी कैसे धीरे धीरे, नहीं मौज से नहीं है, द्रुत गति से दौड़ी दौड़ी, बस वो अपने आप को रख नहीं सकी, ठहर नहीं सकी, चाल में धीमापन नहीं ला सकी, दौड़ी जितनी दौड़ सकती थी। तो जबल कुंडला, ये बताते हैं कि दौड़ने में क्या हुआ कि उनके जो कान के कुंडल रहे वे सब के सब अत्यंत हिलने लगे, ये दौड़ने का एक चिन्ह बताते हैं। जबलोल कुंडला वो दौड़ी, अर्थात इतने जोर से गई कि उनके कानों के कुंडल हिलने लगे, हिलने लगे। और असल में वही आभूषण है जो भगवान से मिलने के लिए हिलते हैं, क्योंकि जड़ है पत्थर है, उनके अवय रखा क्या है। तो गई और पहुंच गई आजग्नि यत्र सकांत, जहां पर वो कांत कांत स्वामी अपना प्रियतम, प्रियतम एक भगवान ही है भला, और संसार में कोई प्रियतम उत्तम कांत वांत है नहीं, ये सारी हम लोगों ने मालूम किस किस को कांत बना रखा है। स्त्रियों में कांत नहीं होते हैं, पुरुषों में भी कांत होते हैं, हम सब लोगों को न मालूम कितने कांत हैं पता नहीं है। तो वे असली कांत के पास जा पहुंची, तो बोले जा पहुंची एक एक गई अलग अलग गई, तो घर के काम काज को संभाल के सहेज के गई होंगी ना, प्रश्न हुआ ये सहेज के गई होंगी कि ऐसे आप कहते भाग गई तो कैसे भाग गई। अरे बोले सुना नहीं, ये कृष्ण गृहित मानसा थी, मुरली की ध्वनि सुनते ही भागी। तो भागी क्यों, क्यों भागी हो, समत्सुकाहा उस श्री कृष्ण से मिलने के लिए परम उत्सुक थी। ये सागर का रूप होता है, ये जो उनके विशेषण है कृष्ण गृहित मानसा समत्सुकाहा, ये बताते हैं उनकी स्थिति को समत्सुकाहा, ये इतनी उत्सुक थी भगवान से मिलने के लिए कि जहां मिलने की बात किसी रूप में भी आई कि उनको और कुछ सूझा ही नहीं, तो क्या किया, अब स्थिति बताते हैं। काचित दोहंत्य दोहम हित्वा, कुछ गोपियां गा दो रही थी, गा दो रही थी, थन हाथ में दू रही, नीचे वचन रखा है दू रही, और मुरली की ध्वनि कान में आई कृष्ण गृहित मानसा समुत्सुका, वो जो थी वो बस दोहन हितवा दोहना छोड़ करके भागी। कहां भागी, जिधर से वो गोलनाद आया था अभी आयू हूं, उस गोलनाद की ओर लक्ष्य करके वो भागी। ये दोहने वालों की दशा, और कुछ गोपियां दूध लाई थी, दूध लाई थी तो उन्होंने दूध को चूल्हे पर रख दिया था औटाने के लिए। अब जहां यह आवाज आया, अब औटाने कौन, जैसे दूध दूते भागी ऐसे चूल्हे पर रखे ही दौड़ी, चाहे उठंजा जल जा, ये जब तक जगत की स्मृति रहती है ना महाराज, तब तक भगवान का आवाज नहीं सुनते हम। जब भगवान का आवाज उसने सुना कि सुनते जगत की स्मृति को भूल गया। साधना का ऊंचा स्तर यह, जगत को याद रखते हुए हम जो भगवान की ओर जाते हैं, ये भगवान की ओर जाते नहीं, उस जगत में रमते हैं भगवान का नाम लेकर, उसी जगत में रमते, उसी की स्मृति रखते ना। तो जहां भगवान का आह्वान कान में सुनाई दिया, जगत भूल गया। तो दूध भूल गई दुहती और दूध को भूल गई चूरे पर। अरे वो और कुछ कर कर रही थी, बोले एक तो हलवा बना रही थी, संयावम कुछ गोपियां जो थी वो हलवा बना रही थी अपने घर वालों के लिए, तो हलवा बना रही, हलवा तो उतार देती, मैं उतार देती कौन, उतारने का होश रहता तब ना, अनुभवास्य यही हूं, बिना उतारे भाग गई, जल जाए हलवा। ये साधक की स्थिति होती है, जब भगवान का आह्वान सुनता है साधक, उस समय जगत को देखता नहीं, बुद्ध ने नहीं देखा, जो प्रेम के साधक नहीं थे उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा, जरा सा एक बार स्त्री पुत्र की ओर देखा फिर मुंह मोड़ लिया भाग गए। तो इस प्रकार से हलवे को उतारे बिना ही चूल्हे पर छोड़े भाग गई। बोले ये तो अपना अपना काम था, कि दूसरे का कोई काम करती हूँ तो बोले ये भी हुआ। परिवेश अंत्या तत्वा परोस रही थी, घर वालों को भोजन परोस रही थी, बड़ा इतनी सभ्यता होती कि परोसना का काम पूरा करके जाती। बोले ना पूरा करे कौन, कृष्ण गृहित मानसा समुत्सुका, पूरा करे कौन, वो तो दूसरा काम पूरा करने के लिए चली छोड़ गई। बोले भाई खैर ये तो कोई बात नहीं, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, तो कोई कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, तो शिशुन पयपायंत, शिशुओं को दूध पिलाती हुई भी छोड़ के भाग गई, शिशु रोते रहे। और काचित पतिन शिशु संत्या, कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थी, वो भी भाग गई। अब इसका उल्टा अर्थ को ले लेगा ना तो वो तो भूल में जाएगा। ये लौकिक अर्थ नहीं, यहां पर ये पहले की बात याद रखेंगे, ये परम उच्च साधना की बात है, जहां जगत नहीं रहता। तो इसलिए आगे इसमें आई है बात, कभी राज पंचायत भाई सुनेंगे तो मालूम होगा, पतियों की बात याद दिलाई जो साधारण स्त्रियों के लिए होती है, भगवान ने कहा जाओ सेवा करो है। और कुछ मेले अपने खा रही थी, इतना स्वार्थ होता ये खाता आदमी तो मैंने खा के चले, तो असनंते भोजनम अतास्य, कई भोजन करती हुई थाली पड़ी रही उन पर। और बोले महाराज और क्या क्या हुआ, अन्य लिंपंत्य कमिजंत्य, कुछ जो थी वो अंगराग लगा रही थी और कुछ उबटन लगा के नहा रही थी, उबटन लगा के नहाना था, उबटन नहीं रही है, उबटन उबटन कहीं लगा कहीं नहीं लगा, ऐसी लगा रही है और छोड़ चली। और कुछ काजल डाल रही थी नेत्रों में, का लोचने अंजंत्य, एक आंख में काजल पड़ा दूसरे का रह गया, ऐसे छूट गया। तो काचित व्यत्यस्त वस्त्र आभरण कृष्णांतिकम ययूः है, पहन रही थी चोली और सोचा कि ओढ़नी पहन लिया, उसको उल्टे कपड़े पहन लिए और हाथ का गहना पैर में पहन लिया, कान का गहना गली में डाल लिया, पता ही नहीं ना ये गहना है कि क्या है। तो बस व्यक्त वस्त्राभरण कृष्णांतिकम यही उल्टे सीधे गहने कपड़े पहन करके विचित्र श्रृंगार हो गया। जहां तक श्रृंगार दिखता है ना अपना श्रृंगार करें वहां तक श्रृंगार का दासत्व है, श्रृंगार की गुलामी है। और वहां जब भगवान का आह्वान होता है तो यहाँ के श्रृंगार की कोई वहां पर फिर मूल्य नहीं रहता, इस सारा श्रृंगार बिगड़ कर वहां का श्रृंगार बनता है। तो इस प्रकार से ये गोपियां चली। इनके लिए एक शब्द और आया है, वो शब्द है तो वैसा ही है ये